शुरू करते हैं लोग। प्रणमो प्रणमो लोये तंगसावरम मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारम् कर्मभूमताम् ज्ञातारम् देशसरद्वाराम् वन्दे सद्गुणलक्षये। तत्वापुत्र महाशास्त्र का यह है बहुत उत्कृष्ट मंगलाचरण। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को याद हो गया होगा। मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, कर्म रूपी पर्वतों को जो भेदने वाले हैं और विश्व तत्व के जो ज्ञाता हैं, वे हमारे परमात्मा, वे परमेश्वर हैं। हमारा मस्तक उन गुणों की प्राप्ति के लिए उनके चरणों में झुकता है। उन गुणों की प्राप्ति माने वीतरागता, सर्वज्ञता और उत्तोपदेशिता की प्राप्ति। वीतरागता, सर्वज्ञता और उत्तोपदेशिता की प्राप्ति इस दिशा में फर्स्ट स्टेप है सम्यक दर्शन। कैसे होता है सम्यक दर्शन? किसको होता है सम्यक दर्शन? उसका सम्यक दर्शन दो प्रकार से होता है। उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के दो भेद कहे गए हैं। नाम आप लोगों को याद और बहुत एक अधिगमज और एक निसर्गज। अधिगम माने होता है उपदेश से। उपदेश से जो सम्यक्त्व हो वो अधिगम ही है। और जिस सम्यक दर्शन का जन्म स्वभाव से हो, आगे जिस सम्यक दर्शन का जन्म स्वभाव से हो वो निसर्गज सम्यक दर्शन है। निसर्ग स्वभाव से सब जीवों को सम्यक दर्शन प्रकट करना है। सब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। आपको पता है कि सम्यक दर्शन किनको होता है? ऐसे कौन से जीव है जिनको सम्यक दर्शन होगा? हाँ भाभी, बिल्कुल सही बात है। चौथे गुणस्थान वालों को सम्यक दर्शन होता है। बहुत बढ़िया। चौथे गुणस्थान में जो जीव अभी नहीं है, पहले गुणस्थान में है, उनमें से किनको सम्यक दर्शन होगा? तो वह जो जीव भव्य हो, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए एक शर्त है भव्य होना के लिए। यदि जीव भव्य नहीं होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकता है। अब भव्य जीव, भव्य भू धातु से बना होने योग्य, जो कभी न कभी पकेंगे, कभी न कभी बनेंगे, कभी न कभी मोक्ष जाएंगे, ये भव्य हैं। लेकिन भव्य भी तीन प्रकार के हैं। भव्य तीन प्रकार के हैं। सुना आपने कभी? आपने सुना? कौन कौन से बताइए? इतना इसलिए नहीं पता क्योंकि कॉन्फ्रेंस पर सुनने से इतना ही पता लगता है। आज में
तुम्हें बोला था?
नहीं, आप तो पता ही नहीं लगा कि तुम्हें बोला भी था। ऐसा होता है, सच कह रहा हूँ मैं। ये बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि आप मोबाइल के सामने ऐसे नहीं बैठ सकते, कॉन्फ्रेंस में आप ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे आप यहाँ बैठे। बोलिए। निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। निकट भव्य कौन है? पहला निकट, नजदीक। जो पीछे जाकर के बैठे हैं वो दूर, पीछे दूर, और जो और नजदीक आए वे निकट। जिनकी भव्यता, जिनका सम्यक दर्शन, जिनकी मुक्ति और जिनका मोक्ष मार्ग निकट है, वे निकट भव्य है, अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करने वाले हैं, निकट भव्य है। दूसरे होते हैं दूर भव्य, जिनकी भव्यता थोड़ी दूर है, जिनका कमरे दर्शन दूर है अभी। और तीसरे होते हैं दूरांगूर भव्य। पहले कौन से बताए? दूसरे और तीसरे दूरांगूर भव्य। दूरांगूर भव्य कौन होते हैं? जिनकी भव्यता दूर दूरांगूर, दूर से दूर से दूर, फिर और दूर, फिर और दूर, दूर दूर होती चली जा रही, ऐसे भव्य। इनमें से दूरांगूर भव्य कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, जस्ट लाइक अभव्य, अभव्य नहीं
है,
समय दर्शन होता ही नहीं है। दूरानुभव भव्य जीवों को समय दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। क्या दो नेली का हमने एग्जाम्पल दिया था सुबह, जो सुबह नहीं थे उनके लिए। अच्छा, समय दर्शन जिनको होगा वे है भव्य। क्या ऐसा समझिए, वापस सुनो पूरी बात, बोल के हो गया। सम्यक दर्शन होने की पात्रता जिनमें हो, माने सम्यक दर्शन होने की योग्यता जो रखते हो, वे सब क्या है? भाग्य, जिनमें योग्यता है। और जिनमें योग्यता ही नहीं है वो है अभव्य। देखिए, ये तो हम भव्य अभव्य की बात कर रहे हैं, इसी तरह से किसी भी वस्तु में योग्यता अयोग्यता की बात की जा सकती है। केवल ज्ञान किसमें होगा? जिसमें ज्ञान होगा। और जिसमें ज्ञान भी नहीं है तो उसमें केवल ज्ञान कैसे होगा? जिसमें अल्प ज्ञान नहीं है उसमें पूर्ण ज्ञान कैसे होगा? जिसके ज्ञान, केवल ज्ञान होने के लिए कम से कम ज्ञान तो चाहिए, मिनिमम ज्ञान तो चाहिए। अब जिसमें ज्ञान ही नहीं है, अब आप सोचोगे उसको पूर्ण ज्ञान पूरे नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। मैं यहाँ बताता हूँ आपको, पेन को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पेन को, ये बताओ, पेन को क्यों नहीं होगा? जिसमें ज्ञान नहीं है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से धैर्य रखो, देखो थोड़ा समझ में आएगी सब बात। आकुलता का काम नहीं
है,
अभी अब दिखता है सबको, सब तो बराबर दिखता है, देखने में दिक्कत तो नहीं किसी को, सबका दर्शन बराबर है, दर्शन जिसको कहते हैं दर्शन, देखने को सम्यक है ना सबका, सम्यक नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए जीव, जीवों में दो प्रकार की योग्यता, यहाँ है जीव, मुझे गुजराती लिखना नहीं आता, जीव दो प्रकार के, एक है भव्य, मूवी देखते हैं, मूवी में पढ़ते नहीं है ना, भव्य और अभव्य। भव्य का मतलब होता है कि जो यह है ना, ये है योग्य, यह का मतलब होता है योग्यता, जहां जहां यह लिखे आपको ज्ञेय जानने योग्य हेय छोड़ने योग्य उपादेय ग्रहण करने योग्य ध्येय ध्यान करने योग्य और ये भी हो गया अभव्य। तो भव्य माने होने योग्य, क्या होने योग्य है तो हम कहेंगे मुक्त होने योग्य। मुक्त होने की योग्यता जिसमें है वो है भव्य, जिसमें मुक्त होने की योग्यता है। जिसमें ये योग्यता ना हो वो है अभव्य, योग्यता ही नहीं है। भव्य जीव तीन प्रकार के, भव्य के तीन प्रकार, एक है निकट, दूसरे हैं दूर, और नंबर तीन है दूरान दूरान दूर। बराबर, निकट भव्य जल्दी मोक्ष जाएंगे, जल्दी मोक्ष जाने वाले हैं वो है निकट। जल्दी मतलब क्या, कितना जल्दी, जल्दी का क्या करेंगे यार, रूपांत भव्य माने जिन्होंने या तो इन भव्य लोगों के जाने वाले हैं, वो तो अपने यहाँ तो है नहीं, महाविजय क्षेत्र में रहते हैं ऐसे जीव, जो इसी भव्य मोह जाएंगे। कुछ जीव ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ से अगले भव में विदेश जाकर मोक्ष जाएंगे, वो भी निकट भव्य। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो यहाँ से स्वर्ग में जाएंगे और वहां से वापस मनुष्य बन के मोक्ष जाएंगे, वो भी सब है निकट भव्य। माने अधिकतम तीन से चार भव, तीन चार भव जिनके बचे हों वो सब है निकट भव्य, और इससे ज्यादा काल जिनका हो वो है दूर भव्य। दूर भव्य क्या होंगे, समझ लो आप अर्ध पुद्गल परावर्तन के बाद, या ऐसा भी कह सकते हैं। देखो एक और निकट की व्याख्या, निकट भव्य में अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल ले लेना, कैसे भी बहुत बड़ा काल है अर्ध पुद्गल परावर्तन। इतने काल तक को हमने किस में ले लिया, निकट भव्य में ले लिया। अब जिनका काल अर्ध पुद्गल परावर्तन से भी ज्यादा हो, वैसे तो जहां जहां आपको चर्चा मिलेगी ना वो तीन चार भाव की मिलेगी निकट भव्य के बारे में, और दूर भव्य कौन से कि इससे अधिक काल, इससे प्लस ये दूर भव्य, और दूरान दूर भव्य उन्हें कभी मोक्ष नहीं जाएंगे।
तो भव्य क्यों कहते हैं,
बस ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि साहब आप ये कह रहे हो कि दूरान दूर भव्य कभी मोक्ष नहीं जाएंगे, कह रहे हैं हम इनको भव्य, और ये अभव्य है ये भी कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। तो फिर दूरान दूर भव्य और अभव्य में क्या अंतर हो गया, इन दोनों में क्या अंतर है, और यदि इन दोनों में अंतर है तो फिर इन अंतर नहीं है, मान लो दोनों ही मोक्ष नहीं जाएंगे तो इनको भव्य क्यों कह दिया गया। इसको तो दूरान दूर भव्य को तो अभव्य ही कह दो ना, इसको इधर कर दो, इसको यहां से इसको इस पार्ट में ले लो, अभव्य की श्रेणी में। तो कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कहेंगे हम, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि दूरान दूर भव्य में योग्यता तो है क्या, और इसमें योग्यता नहीं है या योग्य है, और समझ में आ रहा है, दूरान दूर भव्य में योग्यता है, अभव्य में योग्यता नहीं है वो अयोग्य है, लेकिन दूरान दूर भव्य की योग्यता कभी भी नहीं होगी। ये बीच में पड़ गया गैप, दूरान दूर भव्य में जो योग्यता है तो सही, लेकिन उस योग्यता में कभी भी परिपाक नहीं होगा, इसलिए वो कभी मोक्ष नहीं जा पाएगा। ये दूरान दूर भव्य जीव नित्य निगोल से ही नहीं निकलेंगे, जिनकी निगोल दशा कभी मिलेगी नहीं, योग्यता तो है लेकिन मोक्ष नहीं जाएंगे। इन दोनों के लिए मैंने सुबह के प्रवचन में एक एग्जांपल दिया था क्या एग्जांपल दिया था बताएंगे इसमें? हाँ
और
भांग गुजराती में आपसे भी कहते हैं, कोई बात नहीं। गुमट और ग्रंथ में इनके लिए एग्जाम्पल दिया है आचार्य नैमिषारण्य स्वामी ने। नैमिषारण्य सिद्धांत चक्रवर्ती 11वीं शताब्दी में हुए श्रवण वेगुला में बाहुबली स्वामी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा जिनके पाने के लिए भी हजार वर्ष पुराने हैं, उन्होंने इन दोनों में अंतर बतलाते हुए एक एग्जाम्पल दिया। इनके लिए एग्जाम्पल दिया, दोनों के लिए स्त्रियों का एग्जाम्पल दिया, लेडीज का एग्जाम्पल दिया, और ये कहा कि दो स्त्रियां हैं। एक स्त्री है वांझ, माने जिसमें मां बनने की योग्यता नहीं, ठीक है। दूसरी स्त्री के लिए प्रयोग किया विधवा, विधवा है। इन दोनों में ही, दोनों में से इनमें मां बनने की योग्यता ही नहीं है क्योंकि वो बांझ है। इसमें मां बनने की योग्यता तो है लेकिन ये मां कभी नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि पति का स्वर्गवास हो गया। अमेरिका में बनेगी ये भी नहीं कह सकते, अमेरिका वालों की यहाँ बात नहीं है ये समझना, अमेरिका वालों की बात नहीं है, ठीक है ना, इंडिया वालों की बात है। माने दोनों महिलाएं हैं, दोनों मां नहीं बनेगी, दोनों मोक्ष नहीं जाते ना, जैसे अभाव भी मोक्ष नहीं जाता, दुरानंद भाव में भी मोक्ष नहीं जाता, मोक्ष तो दोनों नहीं जाते। तो अंतर क्या है? फिर एक को अभव्य और एक को भव्य क्यों कहा? कि एक में योग्यता ही नहीं है और दूसरे में योग्यता है। विधवा स्त्री में मां बनने की योग्यता तो है लेकिन कभी मां नहीं बनेगी और इसमें योग्यता ही नहीं है। इसी तरह कह रहे हैं कि दूरांगदूर भव्य में भव्य होने की, मोक्ष जाने की, सम्य दर्शन प्राप्त करने की, सम्य दर्शन प्रकट करने की योग्यता तो है लेकिन उसके साथ में कभी ऐसा बनाव नहीं बनेगा कि वो जीव सम्य दर्शन प्राप्त कर सके, वो योग्यता ही नहीं पकेगी उसके साथ में, साल नहीं पकेगा, निमित्त नहीं बनेगा, देशना का योग नहीं बनेगा उसके साथ में, उसे देशना देने वाले कोई नहीं मिलेगी। शिक्षा कैसे बनेगी? निगोद से बाहर नहीं निकलेगा तो कैसे बनेगी उसमें योग्यता? हाँ चलो कोई बात तो नहीं, तो फिर आप लोगों में से आपको क्या लगता है कौन से होंगे अपन दूरानुभव भव्य हो सकते हैं क्या? अरे भाई क्यों नहीं हो सकते? निगोद में नहीं है, सीधी सी बात है, निगोद से बाहर आने ऐसे दूरानुभव भव्य काम नहीं हो सकते, तो अभव्य हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, नॉलेज लेवल तक जा सकते हैं लेकिन फिर भी अपने आप को अभाव से कभी मत समझना। क्या देखो वो जीव अभाव से होते हैं आपकी सूचना भी है
जिसको समझा है
वो अभाव से होने की संभावना है। ऐसे अपने आप के बारे में कभी शंका मत करना, अरे जिसने अभव से ही समझ लिया वो बुरियासी क्यों करेगा, जिसने अभव ही मान लिया वो दिन मंदिर क्यों आएगा, जिसने अभव से समझ लिया वो तत्व ज्ञान करने का प्रयास क्यों करेगा, पढ़ेगा क्यों, सुनेगा क्यों, समझेगा क्यों? इसलिए इन दोनों की तो बात ही नहीं है। इनके लिए हमने जो गोला लगाया है ना, ये गोला इसीलिए लगाया था कि हम इन गोले को क्रॉस कर दें, ये तो हमारी बाउंड्री के बाहर निकल गए। अब बचे दो, एक बचा निकट भव्य और दूसरा हो गया दूर भव्य। अब इसमें हम कहाँ आते हैं? अब बोलो, अरे पंडित जी निकट हो जाए दूर हो क्या फर्क पड़ता है, हम तो जाएंगे थोड़ा देर, पंडित जी आप थोड़ा जल्दी चले जाना हम थोड़ा देर से चले जाएंगे। सुनो इस देरी का मतलब समझ रहे हो, दूर भव्य का मतलब अनंत 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 काल का संसार में परिभ्रमण करने के बहुत दूर। आपको थोड़ी सी देरी बर्दाश्त है, माही जी को तो पहले के बाद में 22 सेकंड का ऋषभ बर्दाश्त करेंगे, पहले सेकंड का ऋषभ देव तो हो चुके थे, 24वां सेकंड का माही जी को बनने के लिए घोषणा कर दी गई कि तुम 24वें सेकंड का बनोगे, बीच में टाइम पीरियड का 22 सेकंड का सिर्फ एक कोड़ा कोई सागर का काल था, अनंत काल नहीं था, सिर्फ एक कोड़ा कोई सागर का काल,
ये जो आटो पत्थर पड़ा होता है इसके भी अनंत में भाग काल था, बोलो इसके अनंत में भाग काल था, अनंत इससे करो इतना सा काल था, वो उसको बर्दाश्त नहीं था, आपके दूर बसे होना बर्दाश्त है,
निकट हम तो निकट है तो निकट है तो निकट के लक्षण तो दिख नहीं रहेंगे
सब तो निकट है, हम तो निकट है, हम तो निकट है, काम करेगा हमारे लक्षण तो दिखने के लिए कौन होते हैं निकट होने की, निकट होने की पात्रता क्या है, जैसे आत्मा के सिवाय दूसरी बात व्यक्ति नहीं हो, पसंद नहीं आती हो, उसका नाम निकट भव्य है, वास्तव में तो सामने व्यक्ति निकट भव्य होते हैं, देखो लेकिन आपने निकटता के कई क्राइटेरिये बना लिए, फिर किसको निकट कह सकते हैं हम, तो सामने व्यक्ति नहीं हो और सामने दर्शन प्रकट करने वाला हो वो भी निकट भव्य है, सामने दर्शन प्राप्त नहीं किया और सामने दर्शन प्राप्त करने की जिसकी रुचि दिखाई देती है, सामने दर्शन कौन जीव प्राप्त करेगा कि तीन लोग के वैभव और विभिन्न से ज्यादा जिसे अपने गायक की महिमा आती हो वो सामने को प्राप्त करने की पात्रता वाला जीव है, सामने दृष्टि है, सम्यक दर्शन किसको होगा, आठ अंग जिनके जीवन में होंगे वो सम्यक दर्शन प्राप्त करे, कितने अंग है आपके जीवन में बोलो, आपके पास में कितने अंग है, सम्यक दर्शन लेना है आपको, किसको होता है सम्यक दर्शन बता करके गए पड़ेगी अभी आपको क्या बता करके गए बताओ, सम्यक दर्शन लेना है आपको, अभी तो मैं तो बोलो मैं तो वही तो निकट आने का बहाना पूछते थे, आप तो निकट भाग्य हो वैसे, देखो क्या कह रहा हूँ मैं, आपको क्या लगता है हमने दर्शन के लिए आठ अंग के लिए खूब चर्चा हुई है आठ अंगों की है ना, तीन दिन छह प्रवचनों के माध्यम से सर लेकिन किसकी चर्चा हुई, तो बाकी बात मेरे लिए जोड़े नहीं गया, निकलते और निकालते दो तो समझ में आ गए ना, चलो कोई बात नहीं, दो बता करके दे कह रहा हूँ, दो यदि आपने आ गए तो आपको निकट है, निश्चित तो निकांक्षित बनाए भी आ गया तो निकट भव्य होने तो आठ में चाहिए, आठ में चाहिए दो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टार्टिंग से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, निश्चित बना और निकांक्षित बना, निश्चित फिर कहते हैं शंका मत करना कि मैं भव्य हूँ या भव्य हूँ, पहले ही आपको इस बारे में डाउट नहीं होना हम अभव्य हुए तो बार बार में सुनो हम अभव्य हुए तो हम अभव्य चिंता मत करो तुम भव्य हो, शंका नहीं करना, सबक के परमात्मा की वाणी में शंका नहीं होनी चाहिए, निशंकित बना और निशंकित निर्भया निशंकित, जो भय से रहित होते हैं वो निशंकित होते हैं, निर्जर अधिकार के अंतिम कलश समय सार में सात भयों को बदलाने के लिए छह कलश दिए उन्होंने, तीन लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, अरक्षा भय, अभुक्ति भय, ये सात प्रकार के भय जिसके जीवन में नहीं होते वो निशंकित है, आप है निशंकित, आपको शंका है क्या पता था बातें कहते तो हैं क्या हुआ और देख लो आप निकट भव्य के लक्षण, निकांक्षित भोगों की कांक्षा दिखाई देती है अभी आपको, विषयों में जितनी रुचि है उसे आत्मा में रुचि नहीं होती, जैसे आत्मा की रुचि है उसे विषयों में रुचि नहीं हो सकती है, जैसे जगत पसंद आता है उसे आत्मा पसंद नहीं आता, जैसे आत्मा पसंद आता है उसे जगत पसंद नहीं आता, आपकी पसंद क्या है बताओ, निश्चित बात है इसमें क्या है, जिसको आत्मा पसंद आएगा उसको दुनिया पसंद नहीं आएगी, उसको विजय विजय पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि परस्पर विपरीत है, जिसे मुक्ति पसंद आएगी उसे संसार पसंद नहीं आएगा, और जिसे संसार में रंग दिखाई दे रहा है अभी इस बात में मजा आ रहा है, कई लोग मिलते हैं महेंद्र भाई ऐसे, वही कहते हैं पंडित जी आपके यहाँ इतना हम सुन रहे हैं कुछ साल यदि आपके साथ में बैठ करके हमने क्या क्या की है, स्वाध्याय किया है, लाभ किया है, तो एक बात बताओ। ये बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन स्वाध्याय से कम से कम स्वर्ग तो मिल जाएगा ना। कभी तो स्वर्ग के लोग में आया है यहाँ, तो इसलिए आया है थोड़ा पुण्य बन गया है। अरे जैसे पुण्य की क्या है, जैसे बंधन की क्या है, मुझे मुक्ति की चाह नहीं होती। आपको मुक्ति की चाह है या बंधन की चाह है, आपको क्या चाहिए? स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के लिए? ये निकट निकट की बात करो, जिनकी मुक्ति निकट है। सर्वज्ञ भगवान ने जिनके लिए अपने ज्ञान में निकट भव्य देखा है, वो तो कौन होगी? ये निकट भव्य इसका लक्षण बताया तत्मी पंचमी सती का तत्प्रति प्रीति चित्ते नीन वार्ता श्रुता निश्चित भवेश भव्य हो भावी निर्वाण भाजनम तत्प्रति। ये तत्व के प्रति, ये तत्व की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। चौथे सूत्र में ये तत्व की चर्चा बतलाई है। प्रीति चित्ते, अत्यंत प्रीति चित्त से। प्रीति चित्त का मतलब ऐसे नहीं होता मुंह रखा करके बैठे, ऐसा नाम प्रीति चित्त नहीं है। प्रीति चित्त का मतलब उत्साह बहुत है। ये तत्व की बात निकल नहीं जाए, ये अवसर चला नहीं जाए। आपको पता है कि देशना की हम क्या क्या कर रहे थे, कि देशना में कौन सा बात के पता नहीं कब हमारे अंदर में लग जाए कि लाइफ बदल जाए, हमने दर्शन हो जाए, वो सच्ची देशना मिल जाए हमारे को। क्या हम कौन सा शब्द, हमें नहीं पता, कभी भी हो सकता है वो शब्द, तो कभी भी मिल सकता है ना। अब हम 10 मिनट लेट आए सत्संग में, और हमें जो मिलने वाला जो चांस था ना, जो बात के साथ इम्पोर्टेंट बात थी, जो सच में हमें लग सकती थी, वो निकल गई। अब फिर कब नंबर आएगा? आपकी निकटता दूरी में बदल गई। जो काम अभी होने वाला था वो काम दूर हो गया। ये जो गूगल से आते हैं ना पर गूगल मैप देख करके, तो निकट आते आते क्या होता है, फिर वो आगे घुमा देता है और घूम करके ऐसा ही होता है। फिर वो आप फिर थोड़ा सा नजदीक पहुंचा और फिर पता नहीं कुछ दिखाई नहीं रहा है, वो एक ही मकान से बार बार चक्कर लगा दे रहा है और वो आपको दिखाने नहीं पहुंचा पाए। हुआ कभी ऐसा? हो जाता है कभी कभी ऐसा, निकटता दिखते दिखते दूर हो जाता है। क्यों? जब आपके कदम घर से बढ़कर मंदिर की तरफ आए थे, तो निध्यात्म को ऐसा लग रहा था कि आप मुझे घर छोड़ के भागना पड़ेगा, एकदम तो ऐसा माहौल बन गया आपके मन में। और फिर जब आप यहाँ अंदर आए, यहाँ स्वाध्याय में आकर के बैठे, घबराहट चल रही थी निध्यात्म के अंदर में, और फिर जैसे ही यहाँ भोजन के लिए ब्रेक हुआ और बाहर चल करके जब आप भोजन पे चुप पड़े, तो निध्यात्म को थोड़ा बल तो हुआ कि तुम बदले बेटा के खा दी मुझे भरोसा है तो मुझे अपने घर से नहीं निकालेगा। मैंने सुनते समय तो हमारे परिणाम कितने कोमल हो जाते हैं, कितने नर्मल हो जाते हैं, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हमारे परिणाम कैसे हैं? देखो अपने आप के बारे में देखना, दूर भव्य मतलब दूरा दूर भव्य और अभव्य, इसको तो हटा दिया। अब दो की बात कर रहे हैं, निकट भव्य और दूर भव्य की बात कर रहे हैं। अपने आप के बारे में सोचो, मैं निकट भव्य हूँ या मैं दूर भव्य हूँ? कैसे कैलकुलेट करें, कैसे देखें हम अपने आप के बारे में? आप अपने अंतरंग में टटोले कि पंचेंद्रीय विषयों के भोगने के काल में भी आपका चित्त उससे विरक्त रहता है, या इनकी विरक्ति की चर्चा सुनने के काल में भी मन उधर ही दौड़ता है? क्वेश्चन अपना अपना निर्णय कर रहा हूं। हम कितने पानी में हैं ये हमसे ज्यादा कोई दूसरा नहीं जानता। आप दिखाना क्या चाहते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। एक फोटोग्राफर था, उस फोटोग्राफर ने महेंद्र भाई अपने दुकान के बाहर फोटो खींचने की 3 रेट लगाई, एक $20, एक $30 और एक $50। $20 में आप अंदर से जैसे हैं वैसी फोटो खींचेंगे, $30 में आप जैसे दिखते हैं वैसी फोटो खींचेगी, और $50 में आप जैसा दिखना चाहते हैं वैसी फोटो खींचेगी। पूरे लाइफ में एक्सपीरियंस के बाद उसने स्टेटमेंट दिया, मैं पूरी लाइफ इंतजार करता रहा कि कोई $30 की फोटो भी जाएगा, एक भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से मैं कहता हूँ ये फोटो नहीं खींचे तो ही नहीं जाए, कोई नहीं खिंचवाना जाता है अपने अंदर की फोटो। मैं कहता हूँ मैं क्या सोचता हूँ, मेरे अंदर में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे विचारों में, मेरे भावों में क्या चल रहा है, ये बात हम किसी को नहीं दिखाना चाहते, किसी से नहीं शेयर करना चाहते। लेकिन भाई साहब आपकी विनता रोक जाने की और ये दूरी ये आपके चित्त पर निर्भर करती है कि आपके मन में क्या, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, खुद समझ लो हम भव्य हैं या दूर भव्य, निकट भव्य हैं या दूर भव्य हैं, संसार में रहने का किनारा जीता गया है या विदेशी यहाँ से तो वैसे बहुत दूर है, नहीं हमें करना है। तो भाई साहब ये निकट भव्य होंगे इसका मतलब, अब देखो भव्य का मतलब एक तो अथवा मोक्ष जाना, भव्य ना एक तो मोक्ष जाना हो गया, दूसरे भव्य का आप समझ लो सम्यक दर्शन, जिसको सम्यक दर्शन हो गया इसका मतलब ये जो भव्य हो गया। अब आपको ये करना, अब तो टिकट मिल गया हाथ में आ गया, रिजर्वेशन मिल गया, टिकट हाथ में आ गया, तो सम्यक दर्शन की निकटता वो निकट भव्य, समय दर्शन की दूरी वो दूर भव्य। अब आपको लगता है क्या कि आपको समय दर्शन कब होगा बताओ? यदि आपको लग रहा है कि समय दर्शन जल्दी हो जाएगा तो आप निकट भव्य है, और आपको यदि ऐसा लगता है कि समय दर्शन तो भाई साहब बहुत मुश्किल काम है नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि आप दूर भव्य है। क्या कह रहे क्या बात? यदि आपको ऐसा लग रहा है कि समय दर्शन मुझे हो जाएगा, तो सबको पता लगता है परीक्षा देते ना, एग्जाम देते ना, एग्जाम देने के बाद में रिजल्ट कितने टाइम में आ जाता है आपके यहाँ, कितने टाइम में आता होगा जो हाई स्कूल के एग्जाम वगैरह होते हैं, तो एग्जाम के रिजल्ट कितने टाइम में आते हैं? नहीं एग्जाम के बाद क्या बात कर रहे हैं? नहीं मैं तो उनकी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, पेपर वाले एग्जाम, फोर टू सिक्स वीक। अच्छा, और वो जो रिजल्ट 4 to 6 वीक बाद आएगा वो तो पब्लिकली शो होगा, सबको पता लगेगा, लेकिन जो पेपर लिख करके आया ना स्टूडेंट उसको पता है मेरा रिजल्ट क्या आने वाला है, उसको मालूम है आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये मुझे नहीं मालूम लेकिन आपको मालूम है आपका रिजल्ट क्या आने वाला है। समय दृष्टि ज्ञानी जीवों को मरण का भय नहीं है, पढ़ा ना आपने, समय दृष्टियों को मरण का भय नहीं होता। मुझे बताओ क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो जानता है मैंने जो पेपर दिया है वो पेपर टॉप किया गया है, मुझे किस बात का डर? मरण का भय उसको होता है जिसका पेपर लाइफ टाइम बिगड़ता रहा है, उसे डर लगता है यार मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, कहां जाऊंगा, किस किस बात का डर होगा समय दृष्टि यानी जीव को। इसलिए समय दृष्टि को निर्भय कहा गया है, निर्भय होता है समय दृष्टि, मौत की परवाह नहीं है उसको, मौत का डर नहीं है। अरे मौत का डर उसे हो जिसे मौत आती हो, मुझे मौत आती नहीं है, मुझे किस बात का डर, मरण नहीं है उसको। समय दृष्टि ही अद्भुत होते हैं, समय दृष्टियों का जीवन अद्भुत होता है, निकट भव्य जीवों के जीवन में निशंकता होती है, निकांक्षित पना होता है, इच्छाएं नहीं होती, इच्छाएं मिट गई, मोक्ष की इच्छा भी नहीं है। मेरी चिकित्सा है अमूर दृष्टि है, उपगुहन है क्या आपकी लाइफ में? यदि नहीं है तो समझ लेना निकट भव्य पने के लक्षण भी उपगुहन है क्या? लाइफ बदल जाती है भाई साहब, ग्रह सुधर जाती है, कल्याण हो जाता है, आप सोच नहीं सकते हो, सारे झगड़े मिट जाते हैं, घर घर में होने वाले सब झगड़े निपट जाएं, ये ऐसी चीज है उपगुहन। समय व्यक्तियों के घर में विवाद नहीं होते, लक्ष्मण से कितना झगड़ी उसकी वाइफ पता है आपको? नहीं झगड़ी थी, क्यों? 14 साल के लिए छोड़ करके चले गए भाई भाभी के साथ में, मुझे छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं,
सम्य दृष्टि ज्ञानी जीवों को झगड़ा नहीं है, विवाद नहीं है, ये क्रमबद्ध को जानते हैं, ये कर्म के उदय को जानते हैं, ये दूसरे की कमियों और दोषों को ढकना जानते हैं, दूसरे में गुण देखते हैं, आप गुण देखते हैं या अवगुण देखते हैं, उपगुण बड़ी गजब की चीज है, ये उपगुण जिसके जीवन में हो गया इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया। समय दृष्टि के जीवन में उपगुण नाम का अंग होता है, लेकिन निकट भव्य जीव जो सम्यक दर्शन प्रकट करने वाला है उसके जीवन में भी उपगुहन होता है। जिसके जीवन में उपगुहन नहीं है इसका मतलब निकट भव्य होने की पात्रता नहीं। आपको सम्यक दर्शन भी लेना है, सम्यक दर्शन की दुकान है यहाँ, यहाँ सम्यक दर्शन मिलता है हमारे पास में, जो आएगा उसे सम्यक दर्शन मिलेगा, लेकिन आपके आने के बाद में आपकी जांच होगी पूरी। यदि आपको सम्यक दर्शन के योग्य पाए गए तो सम्यक दर्शन मिलने के चांस के लिए आपको वेटिंग नंबर दे दिया जाएगा, और यदि आप उसके अयोग्य पाए गए तो आपको सम्यक दर्शन के लिए रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप सम्यक दर्शन लेने के पात्र नहीं। सभा में जितने लोग बैठे थे हमारे पास में, हमारा भी वेटिंग में लगा दो, हमारा भी नंबर लगा दो सम्यक दर्शन के लिए, बहुत सारे लोग आ गए, पढ़ी हमारा भी नंबर, हमारा भी नंबर, मेरा ठीक है कोई बात नहीं, लेट मी चेक, चेक करने तो मेरे को, जब हमने गहराई से देखा तो एक में भी उपगुहन नहीं दिखा, सब रिजेक्ट सब रिजेक्ट सब रिजेक्ट, उन्हें लाइन लगा करके रोजाना बैठते थे सम्यक दर्शन लेने के लिए, अभी एबिलिटी तो है ही नहीं। आपको सम्यक दर्शन चाहिए तो सम्यक दर्शन चाहिए तो सम्यक दर्शन के लिए पात्रता डेवलप करो ना, वो योग्यता डेवलप क्यों नहीं कर रहे हो आप सम्यक दर्शन वाली, ये निकट भव्य कौन होते हैं इसके लक्षण पहचान करके आप वो अपनी योग्यता डेवलप करो अंदर में, तो निकट भव्य होंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। भाई साहब हमें योग्यता डेवलप नहीं करनी है, हमें तो सम्यक दर्शन चाहिए, ऐसे मुफ्त में सम्यक दर्शन नहीं मिलता है, सम्यक दर्शन के लिए यू हैव टू पे, क्या देना पड़ेगा, निशंकित निकांक्षित निर्भय चिकित्सा अमूर्त दृष्टि उपगुहन स्थितिकरण वास्तव्य प्रभावना भाव होने चाहिए। वास्तव्य है हमारे हृदय में, मुझे नहीं मालूम, अपने हृदय में झांक करके देखो आपके हृदय में है वास्तव्य भाव, यदि नहीं है किसी से कहने की जरूरत नहीं है, यदि नहीं है तो ब्लेम मत करना कि मुझे सम्यक दर्शन हो ही नहीं रहा है, बहन भाई के साथ हो गए मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, केम खाए केम खाए, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा सम्यक दर्शन, हमें नहीं मालूम, हमने तो गाइडलाइन दे दी आपको, आपने वास्तव्य है तो सम्यक दर्शन होने के चांस, आपने प्रभावना की भावना है, जैसी भावना भाई में दिखती है ऐसी ही भावना आप में है तो पात्रता दिखती है, आपके मन में है ऐसी भावना, ये तत्व की बात सब समझे, ये सुने, बोलो आठ आठ घंटे का सफर करके आ जाते हैं महेंद्र भाई वापस यहाँ सत्संग करने के लिए, वहां पे वेस्ट कोस्ट से, बोलो है आपकी भावना ऐसी, हमारे से इतनी भावना नहीं है कि हमारे बच्चे समझे, बोलो हस्बैंड है तो भावना नहीं होती कि वाइफ भी समझे, वाइफ है तो भावना नहीं होती हस्बैंड भी समझे, हम यदि समझ रहे हैं तो हमारी भावना नहीं होती हमारे बच्चे इस तरह के तत्व ज्ञान को समझे, ये चीज हमारे को मिल गई है या फिर नेक्स्ट जनरेशन के में ट्रांसफर होनी चाहिए कि नहीं, बेईमान हो आप, अधूरी चीज ट्रांसफर करोगे, आप पूरी संपत्ति नहीं देते हो बच्चों को, अधूरी चीज देते हो, आपने लाइफ में जितना कमाया है सब बच्चों के नाम करेंगे जाते समय, तो डॉक्टर साहब घबरा गए, अभी लेकर आ रहे, अरे मैं नहीं क्यों अभी देखी बात नहीं कर रहा, लेकिन अपने दिल में तो लिख करके जाएंगे, क्या आप अपने ऐसे बिल बना सकते, कुछ पूछ रहे
भाई, आपने जो कहा कि भरी लगे
क्या,
लेकिन उसका बिजनेस ही बिजनेस का वही होता है ना, सत्ता प्रति धर्म
प्रजम संवेद अनुकंपा आस्तिक कन्नत्व में होते हैं, संवेद माने संसार शरीर भोगों से भय नहीं विरक्ति, संसार शरीर भोगों का डर नहीं है उसको, संसार शरीर भोगों से विरक्ति है, वैराग्य है, अलिप्तता का भाव है। मैं तो ये कह रहा था आप अपनी संपत्ति अपने विल में लिख करके जाएंगे ना कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को मिले, क्या आप अपने बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्या संस्कार भी लिखते हैं उसमें? क्या आप ये भी लिखते हैं कि जो हम ये कमा रहे हैं, जो तत्व ज्ञान हम हासिल कर रहे हैं, ये भी आगे ट्रांसफर कर रहे हैं हमारे को? भावना तो हो, क्या आप अपने बिल में बात लिख करके जा सकते हैं कि सुनो मेरी संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार कब होगा जब तुम सत्संग में जाओगे? बोलो, यदि मेरा बेटा यहाँ सप्ताह में 3 दिन 5 दिन जो सत्संग होता है, स्वाध्याय चलता है, यदि उसमें जाकर के लाभ लेगा तो संपत्ति पर अधिकार होगा, नहीं होगा तो संपत्ति पर अधिकार जैन सेंटर का होगा? बोलो, लगता ही नहीं है। ये भी कुछ चीज है, ये भी कुछ देने की चीज है। अब बोलो, जिनके मन में अपने परिवार में भी ये प्रभावना करने की भावना नहीं है, अब उनको सम्यक्त्व की पात्रता कैसे होगी? निकट भव्य के लक्षण बतला रहा हूँ महेंद्र भाई, निकट भव्य के लक्षण। मैं तो एक एक पॉइंट के ऊपर घंटों चर्चा कर सकता हूँ आपसे, एक एक बात के ऊपर। आप विचार करो, आपका चित्त कहाँ जा रहा है, आपके कदम किधर जा रहे हैं? बोलो, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। दुनिया में सर्टिफिकेट मिलते हो उन्हें फाड़ करके फेंक देना, मुझे तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी पराधीनता नहीं चाहिए कि तुम्हारे चरणों के ताले देने आऊंगा तो तुम्हें दर्शन होगा, तो भव्यता मिलेगी तो तुम्हें दर्शन मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए ऐसी पराधीनता। आज जानते हैं चाणक्य था ना, चाणक्य चंद्रगुप्त को जिसने राजा बनाया, चाणक्य 2000 साल पहले इतिहास में उसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, चाणक्य को। बहुत छोटा बच्चा था, जब वो बहुत छोटा बच्चा था तो उसको देखकर किसी एक बहुत बड़े निमित्त ज्ञानी ज्योतिषी व्यक्ति ने, वो बच्चा था चिंगड़ा था, और देख करके ये कहा कि बेटा तुम तो बहुत बड़े आदमी बनोगे, इतने बड़े आदमी बनोगे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। कैसे कह रहे हो, आपको कैसे पता, आप कैसे कह सकते हो? बोले तुम्हारे दांत के ऊपर दांत चढ़े हुए हैं, एक दांत के दूसरे इधर से इधर ऐसे 2-3 दांत एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारे दर्शनों के लिए इतनी भीड़ उमड़ेगी एक के ऊपर एक, इतने लोग, इतने बड़े आदमी बनोगे तुम। उसने कहा अच्छा, वहां पास में पत्थर पड़ा था, पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए सारे चाणक्य ने। इन दांतों की वजह से मैं वहां आदमी बनूं ये मुझे बर्दाश्त नहीं, इसकी वजह से नहीं। समय दर्शन किसी दूसरे के देने से आए, मुझे नहीं चाहिए ऐसा समय दर्शन, मुझमें योग्यता है तो मैं समय दर्शन लेकर के आऊ, मुझमें पात्रता है। बहुत लोग मेरे लिए ऐसे समय दर्शन देने वाले, और जो समय दर्शन देने वाले दुनिया में आपको मिलेंगे ये बात समझ लेना, वो समय दर्शन दे नहीं रहे हैं, वो समय दर्शन के नाम पर आपको लूट रहे हैं। ऐसा चाहिए उनको, धन चाहिए उनको। बहुत लोग हैं दिखते हैं हमारे निगाह के सामने, दिखते हैं जिनको पैसा चाहिए, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ एक बात से मतलब है कि अपने को पैसा कैसे मिले। वो आराधक सच्चे नहीं हो सकते हैं, वो प्रभावक सच्चे नहीं हो सकते हैं। सुनो, सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। प्रभावक मतलब समझिए ना, प्रभावना करने वाले, जिनको आप अपनी भाषा में स्कॉलर कहते हो, जिनके लिए आप कहते हो ये विद्वान है, ये ज्ञानी है, ये गुरु है, ये महात्मा है, ये त्यागी है, ये तपस्वी है, वो कौन है? आराधक। पहले आराधक बनो, जब तक सच्चे आराधक नहीं होंगे तब तक आपके माध्यम से होने वाली प्रभावना सच्ची प्रभावना नहीं है। मुझे इतिहास में एक नाम ऐसा बतला दो जिन्होंने प्रभावना के लिए घर छोड़ा हो, आराधना के लिए जिन्होंने घर छोड़ा उनके माध्यम से अपने आप प्रभावना हुई थी। इतिहास में नाम बतलाओ, कितने महापुरुष मिलेंगे आपको? ये ज्ञानी महापुरुष जो दिखते हैं, ये चित्रपट और भी लगे हुए आपको जहां जहां दिखेंगे, प्रतिमाएं विराजमान है वेदी के ऊपर, ये सब कौन लोग हैं? प्रभावना के लिए घर नहीं छोड़े, प्रभावना के लिए उन्होंने जीवन नहीं दिया, आराधना के लिए समर्पण किया। हमें जगत का कल्याण नहीं करना, हमें अपना कल्याण करना है। ये मोक्ष मार्ग, ये जनागम, ये जनवाणी, ये जगत के कल्याण के लिए नहीं है, ये आत्म कल्याण के लिए है। दया करो पहले अपने पर, अपने आप के ऊपर दया करो सबसे पहले, अपने आप के ऊपर करुणा करो। मैं मर करके तिरंज में नहीं चला जाऊं, मैं मर करके नरक में नहीं चला जाऊं, मैं चतुर्गति में परिक्रमा नहीं करूं, ये भाव मेरा छूट जाएगा तो क्या होगा। दया करो पहले अपने पर, अपने आप के ऊपर दया करो पहले, अपने आप के ऊपर करुणा करो। जिसके हृदय में अपने आप के प्रति करुणा का भाव नहीं है, जिसके हृदय में अपने आप के प्रति दया का भाव नहीं है, सोचो वो कैसे प्रभाव ना करेगा। निर्दयी है, आत्म दया नहीं है तो क्या प्रभाव ना करेगा, प्रभाव ना नहीं होगी उसके माध्यम से। जिसकी दृष्टि धन पर है, आत्म कल्याण पर नहीं है, तो प्रभाव ना नहीं कर सकता है। क्योंकि पहला लक्षण है निशंकित और दूसरा लक्षण है निकांक्षित। निकांक्षित सम्यक दर्शन देने वालों का नहीं है, तो भाई सम्यक दर्शन लेने वालों की बात कर रहा हूँ अभी, तो सम्यक दर्शन प्रकट करने वालों की बात कर रहा हूँ। निकांक्षित का मतलब है जिसे डॉलर नहीं चाहिए, निकांक्षित का मतलब है जिसे प्रसन्नता नहीं चाहिए, निकांक्षित का मतलब है जिसे ख्याति नहीं चाहिए, निकांक्षित का मतलब जिसे यह प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, निकांक्षित का मतलब है जो मेरे अनुयायी हो भक्त हो मुझे नहीं चाहिए। निकांक्षित जिसे अभी जरूरत है कि नहीं नहीं मेरे को तो अभी बहुत भीड़ इकट्ठी करनी है, मेरे बहुत भक्त होंगे, बहुत फॉलोअर्स होंगे, ये होगा वो होगा, तो क्या कर रहा है, किस तो चीज में लगा है। सबकी बात कह रहा हूँ, प्रभावना की भावना हो लेकिन निकांक्षित बने हो। साहब अभी तो आपने कहा था प्रभावना प्रभावना, तो सुनो भाई प्रभावना तो कितने नंबर पर है, अंत में है प्रभावना। प्रभावना उसके माध्यम से होती है जिसमें निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमोल दृष्टि उपगुण स्थितिकरण और वात्सल्य होता है, उसके बाद प्रभावना होती है। शंका हो क्या, पहले शंका मिटे तो निकांक्षित बना होगा। पहली चीज है शंका मिटे तभी तो कांक्षा निकांक्षित बना होगा, अभी शंका ही बनी हुई है तो निकांक्षित बना कैसे होगा। देखो सुनो निशंकित सबसे पहला आठ का क्रम बतलाता हूँ महेंद्र भाई, आठों अंगों का क्रम बतलाता हूँ। सबसे पहले निशंकित हुआ जाता है, सबसे पहले निशंकित हुआ जाएगा। क्यों भैया निशंकित क्यों होगा सबसे पहले, क्यों, क्योंकि आपको शंका बनी हुई है तो आप एक कदम भी रख नहीं सकते हो। पहले श्रद्धा, सम्यक दर्शन, निशंकित सम्यक दर्शन का लक्षण, सम्यक दर्शन की पहचान का चिन्ह। निशंकित की बात कर रहे हैं भाई साहब हम, सबसे पहली चीज शंका नहीं होनी चाहिए। किस बात पर शंका नहीं होनी चाहिए कि जिनेंद्र भगवान ने ये बात कही है कि पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख नहीं है। बोलो निशंकित हो क्या, हाँ निशंकित है तो फिर अब तुम्हारे काम क्या नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हें शंका नहीं है ना। भगवान कह रहे हैं मिलियंस और बिलियंस इकट्ठे कर लो, इसमें सुख नहीं है, इसमें आनंद नहीं है, इसमें मजा नहीं आएगा, हमें इस बात के ऊपर रंज मात्र भी शंका नहीं है। ओ आपको शंका नहीं है इस बात के ऊपर, क्या जी बिल्कुल शंका नहीं है, पक्का 100% हमारे को इस बात पर शंका नहीं है। वेरी गुड, अब हो गए आप निकांक्षित। जब शंका भी नहीं है तो शंका नहीं है तो जो बात कही गई है उस पर हुआ भरोसा, जब उस बात पर भरोसा हुआ तो फिर विषय भोगों की इच्छा मिट गई। निकांक्षित जब विषय भोगों की इच्छा मिट गई, जब विषय भोगों की इच्छा नहीं रही तो फिर मनिराजों के ज्ञानियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा का भाव भी क्यों आएगा। विषयों की भावना ही नहीं है तो सुंदर शरीर देख करके आकर्षण और बदसूरत शरीर देख करके उसके प्रति हटने का भाव भले नहीं होता है। निजी चिकित्सा हो गई, अब मूड नहीं है, अमूड हो गया। जब तत्वों में मूड नहीं है, चार हो गए यहाँ, जब तत्वों में मूड नहीं है सुनो फिर उपगुण होता है। तत्व तत्व समझता है ना, या तत्व समझता है तो फिर दूसरे की गलती नहीं देखता। निशंकित निकांक्षित निर्विचिकित्सा अमूल दृष्टि उपगुहन, दूसरे की गलती नहीं देखता, दूसरे की कमियां नहीं देखता, आप दूसरे के माइनस पॉइंट दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि तत्व दृष्टि से देखता है। चौथे नंबर पर कहा था मूल अमूल, अमूल दृष्टि चौथा नंबर, इसका मतलब तत्व में मूल नहीं है। अब तत्व में मूल नहीं है माने तत्व दृष्टि से देखता है तो फिर जगत में किसी की कमियां और गलती नहीं दिखाई देती उपगुहन। और जब गलती नहीं दिखाई देती तो फिर धर्म मार्ग से विचलित होते हुए कोई स्थिर करता है या तेरी कोई गलती नहीं है तो क्यों धर्म से विमुख हो रहा है, धर्म मार्ग में स्थिर है, फिर स्थितिकरण होता है। और स्थितिकरण सच्चा तब होता है जब वात्सल्य होती है, और जब वात्सल्य होती है और ये सब होते हैं तो जो भी होता है लाइफ में उसके माध्यम से होती है अपने आप प्रभावना। प्रभावना के लिए वात्सल्य चाहिए, उल्टे लगाओ, प्रभावना करने के लिए वात्सल्य चाहिए, वात्सल्य के लिए स्थितिकरण चाहिए, स्थितिकरण के लिए उपगुहन चाहिए, उपगुहन के लिए अमूर दृष्टि होना चाहिए, अमूर दृष्टि होने के लिए निर्विचिकित्सा निकांक्षित और निशंकित पना होना चाहिए। इनके बिना नहीं चलेगा काम, समझ रहे हो आप, ये साधारण नहीं है ये बातें, ये आपको बहुत गहराई से समझनी पड़ेगी, ऊपर ऊपर से समझने से काम नहीं आता है। हमने समझ लिया था, हम तो निकट भागे, क्या समझ लिया आपने, हम तो निकट भागे। अरे वाह, चार दिन स्वाध्याय में क्या आ गया, सत्संग में अपने आप को निकट भागे समझने लगा, दो घंटे यहाँ जिन मंदिर में आकर के क्या सुन लिया अपने आप को निकट भागे समझने लगा, कि सुन दो घंटे सुनने के लिए निकट भागे है तो बाकी के 22 घंटे पंचेंद्री विषय भोगों में रज्जा पचा होने से दूर और दूरानु क्यों नहीं है। दो चीजें है ना अलग अलग, एक है निकट एक है दूर। आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं निकट भव्य हूँ, क्या कह रहे हो आप, मैं निकट भव्य हूँ, क्यों क्यों है निकट भव्य बोलो। मैं इसलिए निकट भव्य हूँ क्योंकि मैं रोजाना 2 कलाक स्वाध्याय करता हूँ, ये मैं निकट भव्य हूँ महेंद्र भाई, 2 घंटा स्वाध्याय करता हूँ रोजाना, निकट भव्य हूँ इसलिए। सुन, 2 घंटा स्वाध्याय करने से निकट दिख रहा है तेरे को, अब बाकी 22 घंटा कहाँ बिता रहा है, उससे दूर क्यों नहीं। 2 और 22 क्या, 2 घंटा इधर दे रहा है, 2 और 22 किधर दे रहा है, बोलो वही पंचेंद्रियों के भोगों में, तो फिर ये निकट होगा कि दूर होगा, दूर होगा होगा कि नहीं पता नहीं आपकी अपनी बताओ ना, मैं बताओ यार हम क्यों बताएं किसी की, क्यों सुने किसी की, अपने अंदर में देखो, अपने आप को देखने का मार्ग है, किसी और को देखने का मार्ग नहीं। सोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाश 7वें अध्याय में बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी, हमने जो ये कमियां बतलाई है इन कमियों में को अपने आप में देखना, औरों की कमियां देख देख कर कशाई नहीं होना, यदि अपने में दोष हो तो उन्हें निकाल देना, इतना सरल मार्ग है ये। तो किसकी चर्चा चल रही थी अपने यहाँ, सन निसर्ग अधिगमत हुआ, निसर्ग और अधिगम क्या है, ये सब ये दोनों क्या है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के हेतु, सम्यक दर्शन सबको चाहिए। तो निसर्गज और अधिगम, निसर्ग माने स्वभाव और अधिगम माने उपदेश, और सुनना मार्मिक बात कहता हूँ, निसर्ग माने स्वभाव और अधिगम माने उपदेश, इन दो से होता है सम्यक दर्शन। अब इन दो में आपके पास में क्या है और क्या नहीं है, निसर्ग तो है अधिगमन की है, गुरुओं का उपदेश मिले, उनका उपदेश मिलता रहे, उनका सानिध्य बना रहे, ये अधिगमन है, ये अधिगमन पना भी चाहिए। यदि अधिगमन पना आपको नहीं मिला माने उपदेश नहीं मिला और उपदेश सुनने का अवसर मिलने का चांस नहीं मिला और तुमने खो दिया, तो फिर आपके वो स्वभाव किसी काम नहीं आएगा। वो स्वभाव कहाँ काम आएगा? कहते ऐसा ही हो जाएगा जैसे दूरान दूरी की स्थिति है ना, दूरान दूर की स्थिति वैसी स्थिति हो जाएगी। दूर होती चली जा रही है, हम क्या करें? निमित्त नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा, मौका नहीं मिल रहा है, परिस्थिति नहीं बन रही है, दूर होती चली जाती है उसकी वजह से। तो तत् निसर्गात अधिगमात वा, तीन सूत्र हो गए, याद हो गए आपको तीन सूत्र? तीन याद हो गए हम तो आगे बढ़ूंगे। तीन हो गए, पहला क्या था रमेश भाई? सौर भैया, दूसरा तत्वात् श्रद्धानम सम्यक् दर्शनम, नंबर तीन तन्निसर्गाद्वा। अब चलो निसर्ग और अधिगमन के बाद आगे बढ़ते हैं हम। ये कहते हैं शिष्य ने प्रश्न उठाया कि आपने अभी तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक् दर्शनम कहा था दूसरे सूत्र में, तो हमें ये बतलाइए तत्व कौन से हैं? उमा स्वामी आचार्य के शिष्य को पता नहीं है ये तत्व कौन से हैं? और जीवा जीवा सर्व बंध संबंध निर्जरा मोक्षा तत्व, जीव जीवा सर्व बंध संबंध निर्जरा मोक्षा तत्व। पढ़ लो एक बार सूत्र ध्यान से, देखो कोई शब्द नहीं समझ में आ रहा। जीव जीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा तत्व, मोक्षा तत्व, ये सब सात तत्व हैं। इन सात तत्वों में से हमें ये बतलाइए आप कौन से तत्व हैं? सात में से आप जीव तत्व हैं, ठीक है। तो राग द्वेष आपके हैं या नहीं है? राग द्वेष आश्रव है, आपके हैं या नहीं है? राग द्वेष कौन सा तत्व है? तत्व कौन सा है? राग द्वेष सात तत्वों में बतलाओ क्या कर रहे हैं आप? आगे दीजिए थोड़ा और, आश्रव तत्व है, राग द्वेष आश्रव तत्व है, ज्ञानावरणी आदि बंध तत्व है, सम्यक् दर्शन आदि संवर निर्जरा तत्व है, केवल ज्ञान आदि मुख्य तत्व है। सुनो, और आप बोले मैं तो जीव तत्व हूँ, समझ में आ रही है बात? मैं तो जीव तत्व हूँ, मैं खुद मैं हूँ जीव तत्व, और ये जो मोक्ष है केवल ज्ञान है अरहंत और सिद्ध दशा है, ये मोक्ष तत्व है। छठे गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक की जो दशा है ये सांबर निर्जरा तत्व है। क्या मिथ्या प्रगति प्रमाण प्रचार योग ये आश्रम और बंध तत्व है, शरीर आधिक या जीव तत्व है, और मैं जीव तत्व हूँ। देखो सात तत्वों की यदि बराबर एंट्री की जाए सही सही स्थान पर सही सही जगह पर, तो आप ये निश्चित समझ लीजिए कि आपका शुद्ध जीव तत्व ख्याल में आएगा। क्या है सात तत्वों को जानने का मतलब? क्या है सात को जान लिए तब हम लिखा मैं कषाय करता हूँ, आप बोलिए मैं कषाय करता हूँ मुझे कुछ सात है, तो क्या हुआ कि आपने सात तत्वों में से जो आश्रव तत्व था उस आश्रव तत्व की एंट्री गलती से जीव तत्व में कर। अकाउंट्स बनाते हैं ना आप लोग, बिजनेस करते हैं, बिजनेस में अकाउंट होते हैं सबके अलग अलग, तो हमें भी यहाँ सात अकाउंट खोलने हैं, आपको अपने यहाँ सात अकाउंट खोलने हैं। एक अकाउंट अपना है जीव तत्व का और बाकी छह अकाउंट दूसरे के हैं, एक अजीव का अकाउंट है, एक आश्रम का अकाउंट है, एक बंध का, संबंध निर्जरा और मोक्ष का, सबके अलग अलग अकाउंट है। अब सुनो इसमें से जो भी एंट्री होगी उस एंट्री की आपको क्वेश्चन करनी पड़ेगी, इसमें खतौनी करनी पड़ेगी। क्या करते हैं आप लोग? लेजर एंट्री होगी, लेजर बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे उस लेजर एंट्री के लिए? जो एंट्री जिसकी होगी, जिससे लेना था उसमें डालना पड़ेगा, जिसको देना था जिसकी एंट्री थी उसमें डालनी पड़ेगी। प्रॉपर वे में एंट्री देनी नहीं होगी तो अकाउंट बिगड़ जाएंगे। तब अब सबकी एंट्री करो एक एक चीज की। राज देश का भाव हुआ मुझे कितने अकाउंट में डाले इसको, आश्रम के अकाउंट में। तो मुझे हुआ कि आश्रम का हुआ, अरे मैं तो जीव तत्व हूँ और राज देश आश्रम तत्व है, दो तत्व ही न्यारे न्यारे हैं। तो जो आश्रम तत्व है उसको जीव तत्व में मिला रहा है, आश्रम तत्व को जीव तत्व में नहीं मिलाना, बंध तत्व को जीव तत्व में नहीं मिलाना, संबंध निर्जरा तत्व को जीव तत्व में नहीं मिलाना, मोक्ष तत्व को जीव तत्व में नहीं मिलाना, अजीव तत्व को जीव तत्व में नहीं मिलाना। शरीर और आत्मा एक है, जीव अजीव तत्वों को मिला दिया। शरीर अलग है और आत्मा अलग है, या अजीव तत्व को अलग कर दिया। राग द्वेष आदि विकारी भाव भिन्न है, आश्रम और बंध तत्व को अपने से अलग कर दिया। निर्बल पर्याय मुझसे भिन्न है, ये संबंध निर्जरा मोक्ष तत्व ये मुझसे भिन्न है, क्योंकि मैं जीव तत्व हूँ और वो संबंध निर्जरा तत्व है। क्या बारीकी से समझने की कोशिश करना, पॉइंट समझ में आएगा तो मजा आएगा आपको। बात समझ में आ रही है क्या? तत्व साथ है ना, ये सात तत्व क्यों बतला रहे हैं? हाँ, ये तो बालबोध पाठमालाओं के अंदर बतला दिए सात तत्व। तो ये तत्वार्थ सूत्र जैसे महाशास्त्र में ले जाकर के भी हमारे को सात तत्व बतलाएंगे कि हाँ इनको समझो गहराई से, कि कैसे समझे इनको, कि चार प्रकार से समझे इन पांच तत्वों को। चार प्रकार से समझना है महेंद्र भाई, कौन कौन से चार प्रकार से? आगे सूत्र दिया पांचवा सूत्र, नाम स्थापना द्रव्य भाव सह संन्यास है। देखा उसको पांचवा सूत्र आपकी बुक में, देखिए मिलता है क्या? मिल रहा है आपकी बुक में? नाम स्थापना द्रव्य भाव सह तत्न्यास है। नाम स्थापना द्रव्य भाव सह तत्न्यास है। चार बातें कह दी यहाँ, चार शब्द स्टार्टिंग के याद रखना डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, ठीक है ना, अकाउंटेंट साहब, बिजनेसमैन साहब, सब सब ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं? नाम पहला, दूसरा है स्थापना, तीसरा है द्रव्य और चौथा क्या है? भाव सह। भाव सह माने इन चारों से तत् तत् माने वह जिसकी चर्चा कर रहे थे हम, किसकी? समय दर्शन की। तत् माने वह न्यास है, उसका ज्ञान होता है। सात तत्वों का ज्ञान इनसे होता है, सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान इन चार बातों से होता है। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो नाम जानो, नाम जानो। नाम ये क्या होता है? ये चार निक्षेप है, ये पहले की है आप लोगों के बीच में चर्चा ज्ञान, लेकिन आप लोग भूल गए हैं इसलिए दोबारा करनी पड़ रही है। पहला क्या है? नाम। नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? ललित भाई। अच्छा, आपका नाम क्या है? चंद्रकांत भाई। इनका ललित भाई है, आपका चंद्रकांत भाई है, और आपका सतीश भाई। तो सतीश भाई, आपको यदि मैं डॉक्टर चंद्रकांत भाई कहूँ तो नहीं चलेगा ना? कभी चलेगा? चलेगा? जिसका जो नाम है उसको उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए ना। लेकिन सुनो, यहाँ ये कह रहे हैं कि नाम में कुछ दम नहीं है। ये नाम तो दिया गया है, ये तो नाम ऊपर से दिया गया है। ये नाम निक्षेप उसे कहते हैं जिसमें बिना गुण, बिना धर्म, बिना लक्षण, बिना किसी बाहरी योग्यता के स्पेशल दे दिया जाए, उसका नाम क्या है? नाम। कुछ मतलब नहीं है, ऐसे ही रख दिया। देखो, इसीलिए तो दुनिया में कितने अच्छे अच्छे नाम वाले लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम वाले होते हैं लोग। बच्चों के नाम के लिए पूछते हैं, पंडित जी को अच्छा नाम बतलाओ, अच्छा नाम बतलाओ, काम अच्छा करो तो नाम ही अच्छा हो जाएगा दुनिया की निगाह में। बोलो महेंद्र भाई, काम अच्छा करना कि नाम अच्छा रखना? काम अच्छा करना, लेकिन काम अच्छा करना ये तुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन हम तो नाम की तरफ आकर्षित होते हैं। पहले नाम बतलाओ, आपका नाम बहुत अच्छा है चंद्रकांत भाई, बहुत अच्छा नाम है। काम भी अच्छे होंगे मुझे नहीं मालूम लेकिन नाम में दम नहीं है, दम तो काम में है भाई साहब। मैं आपसे पूछता हूँ कौन सा नाम अच्छा होता है और कौन सा नाम खराब है? आप कहते लाशेख नहीं जाता ललित भाई, क्या लाजेन नहीं रखा नाम? लाजेन अच्छा नाम नहीं है? नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बात कर रहे हो हमारे नाम के साथ में, आप क्यों उसका नाम जोड़ रहे हो? ऐसा नाम नहीं, आपको तो अच्छे नाम, तो अच्छे नाम होने चाहिए। अरे भाई नामों में कोई दम नहीं है, नाम भगवान रख लेने से कोई आग नहीं चढ़ाने लगते, लोग पूजा नहीं करने लगते। नाम यदि महावीर हो तो कोई बहुत पावरफुल नहीं हो जाता है वो व्यक्ति? अपना नाम ऐसा रखता है, ऐसा होता है जैसे अपना नाम भगवान जैसा नाम हो ना, ऐसा लगने लगता है जैसे मैं ही भगवान हूँ। शास्त्र पढ़ते पढ़ते अभी अभी किसी लाइन में कहीं कोई ऐसा शब्द आ जाए जो शब्द हमारा नाम वाला ही हो, तो इसको लगने लगता है मेरा ही नाम है। कितना अटैच है इस नाम के माध्यम से, इस नाम में नाम नाम में मरे जा रहा है, और हम कह रहे हैं एक नाम के अनंत लोग होते, अनगिनती लोग भूतकाल में हो चुके हैं, वर्तमान में है, भविष्य में होने वाले हैं, कौन किसे पहचानेगा? महेंद्र भाई, कहीं महेंद्र भाई तो बहुत हो सकते, महेंद्र भाई शाह बहुत है, बहुत है। एक तो आपकी वेवाई है, महेंद्र भाई चाहिए है वो भी क्या? मन्ना वैष्णो जी भी मिल जाएगी वहां फिनिक्स में, उन्होंने कहा कि पापा 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 जी का नाम महेंद्र भाई शाह था और इनका नाम भी महेंद्र भाई शाह है, मुझे आकर के गोत्र भी नहीं बदलना पड़ा, मैं एजुकेटेड रह गया सब। एक नाम के कितने लोग होते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर में यदि उसी नाम के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई बहुत बड़ा आविष्कार किया हो तो समझता है मेरा नाम आया आज तो क्या, और यदि कहीं उसको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकला हो तो यार मेरे नाम वाला होना था। ये कह रहे हैं इन नामों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये नाम तो सिर्फ वस्तु की पहचान के लिए है, बिना गुण धर्म शक्तियों के सिर्फ वस्तु की पहचान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाए वो शब्द है नाम निक्षेप। सबसे पहले जानिए आप नाम किस किस के नाम जानते हैं, जीव का, जीव जीव, ये जीव शब्द ये जानना जरूरी है। सेकेंड नंबर है स्थापना, नाम के बाद में करो आप स्थापना, दो प्रकार की होती है स्थापना, कौन कौन सी स्थापना, कौन कौन सी दो प्रकार की है स्थापना? स्थापना निक्षेप दो प्रकार का, अब एक काम करना पिछले साल वाले प्रवचन सुनना मेरे तुम महेंद्र भाई ऐसा भी रख सकते हैं, मुझे तो बिठाओ इधर थोड़े गले को भी आराम मिले, वो पिछले साल वाली कैसे दोबारा लगा दो अरे स्थापना दो प्रकार की होती है, सदाकार स्थापना और एक असदाकार स्थापना। ये स्थापना निक्षेप है, मैं तो पिछले साल की कह रहा हूँ और सही बतलाऊ तो पिछले चार साल से यही बात पढ़ा रहा हूँ आपको, बार बार यही पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा है, और फिर भूल जाना अगले साल भी पढ़ाऊंगा। पड़ती दो प्रकार की स्थापना होती है भाई, एक सदाकार स्थापना है एक असदाकार स्थापना है। तत् आकार, जो वस्तु जैसी हो, जो व्यक्ति जैसा हो, जो पदार्थ जैसा हो, उसकी स्थापना उसी प्रकार की शेप आकार वाली दूसरी वस्तु में स्थापना कर देना, कि तत् आकार स्थापना है। स्थापना से भी वस्तुएं पहचानी जाती हैं, स्थापना से भी हम पकड़ते हैं किसी भी वस्तु को, अरे बहुत बार तो असदाकार स्थापना अपनी स्थापना गाड़ी में हो जाती है, अपनी स्थापना चप्पलों में हो जाती है। बाहर से किसी व्यक्ति ने शूज देखे और कह दिया कि वो तो आ गए, क्या आपको कैसे पता ये दिख रहे हैं ना? अरे जी जूते दिख रहे हैं, आप व्यक्ति की बात करकर के जूते उनके है, उनकी स्थापना जूतों में कर दी। बाहर वैन खड़ी हुई देखी आपने और गाड़ी का नंबर देखा और आपने तुरंत कह दिया मुकुंद भाई आ गए, ये कैसे कह दिया आपने कि मुकुंद भाई की स्थापना गाड़ी में कर दी? ये कौन सी स्थापना है? इस स्थापना को कहिए असदाकार। ये भी स्थापना है, हमारे भगवान की भी स्थापना है, जिनेन्द्र देव की भी स्थापना है। ये स्थापना उसकी सदाकार स्थापना। इसकी जो प्रतिमाएं बनती है हमारे यहाँ वो बनती है सम चतुर्थ संस्थान वाली। सम चतुर्थ संस्थान मतलब, सम चतुर्थ संस्थान मतलब बिल्कुल सुडोल। आपको पता है अपनी प्रतिमाओं को जब प्रतिष्ठाचार्य देखते हैं, जब पास करते हैं प्रतिष्ठित होने के पहले 108 प्रकार के नक्शी है। क्या कह रहा हूँ? 108 प्रकार से नापी जाती है, उसका फर्क नहीं आता। ये कान किस साइज का है, ये कान भी उसी साइज का होगा, यहाँ से नीचे के हाइट और ऊपर की हाइट बराबर, फिर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा और यहाँ से ऊपर का हिस्सा, ऐसे चार हिस्सों के अंदर पूरा शरीर बढ़ता है। ये इधर कंधा कितना है, फिर ये उतना इधर है कि नहीं, एक चीज बारीकी से नापती है। ये हिस्सा जितना होगा उतना ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा जितना होगा, आप समझ रहे? सबको समझ संस्थान होगी वो प्रतिमा। तो ये जो स्थापना है, क्योंकि उनका मूल गुण था, तीर्थंकर परमात्माओं के जन्म के अतिशयों में या 46 मूल गुणों में ये समचतुर संस्थान नाम का गुण था, उसकी स्थापना इस प्रतिमा में कर दी। कितनी जगह स्थापना करते हैं आप, किसी चीज के खो जाने पर, किसी चीज के गुम हो जाने पर, गेम पूरा बिगड़ रहा है और एक काटी यदि खो गई है उसकी जगह दूसरे की स्थापना कर दी जाती है। तो नहीं होंगी आपने ऐसी बातें, चेस खेलते हैं आप तो एक काटी हो गई उसमें से भी समझ लो आप उसमें से हाथी गायब हो गया, एलिफेंट गायब हो गया, रुक कहते हैं ना, गायब हो गया अपने हाथी, आप क्या करेंगे? अब उठा के फेंक देंगे उसको, नहीं खरीद के लाना है। अभी क्या करें खेलने के लिए? अरे अरे काम करो, ये लो ये रख लो, अभी कैसे चलेगा? हाथी जैसा चलेगा, हाथी जैसे चलाना पड़ेगा इसको। हाथी की जगह रखा है, स्थापना की हमने इसमें हाथी की, ये सीधा चलेगा, 90 डिग्री पे टक लेगा। ये नहीं चलेगा, नया लाना पड़ेगा, सब चलेगा। वो कह रहे उनकी मानोगे आपकी, उन्होंने बुलाया है उनकी माननी पड़ेगी। बोलो चलता है, इसका नाम है स्थापना। कहाँ कहाँ स्थापना कर लेते हैं हम, व्यक्ति की स्थापना, वस्तुओं की स्थापना सदाकार और असदाकार रूप से होती है, जीव की स्थापना। सुनो ये दो इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रीय जीव है, ये पंचेंद्रीय पने में जीवत्व की स्थापना की है, ये मिथ्यात्व की जीव है, ये मिथ्यात्व पर्याय में जीवत्व की स्थापना की है, तभी तो आप ये जीव पहचान रहे हैं। फोटो में स्थापना कर देते हैं, मॉडल में स्थापना कर देते हैं, किसी के द्वारा बनाई हुई किसी चीज में स्थापना कर देते हैं, और वो स्थापना इतनी बहुमूल्य हो जाती है। यदि वो व्यक्ति बहुत बहुमूल्य था तो उनके द्वारा की गई स्थापना की गई वस्तु में बहुत कीमती हो जाती है। समझ लो जितने महापुरुष हुए हैं धरातल पर, उन सबके घर की चीजों की जब नीलामी होती है ना, तो मिलियंस बिलियंस में बिकती है उनका पेन, उनका चश्मा, क्या एक एक चीज उनके घर की, जिसको वो यूज में लेते थे, जिस बेड से धोनी खेलता था, सचिन तेंदुलकर खेलता था, उस बेड की नीलामी होगी तो कितने में बिकेगा? $200 में। क्यों क्यों बतलाओ मेरे नाम? उसमें स्थापना है, किसकी स्थापना है? उस बेट को हाथ में लेता है तो एवं बोलता है मेरे पास में सचिन तेंदुलकर खड़ा है, इसमें उनकी स्थापना। ऑर्डर ऑफ में स्थापना, फिजर्स में स्थापना, स्थापना से व्यक्ति पकड़ में आता है, स्थापना से पहचाना जाता है, स्थापना भी पहचान का एक चिन्ह है। नाम से व्यक्ति की पहचान होती है, स्थापना से भी वस्तु की पहचान होती है, वस्तु पकड़ में आती है। दो बातें हो गई, नाम से और स्थापना से दो निक्षेप हुए, ये दो और कह रहे हैं आगे, द्रव्य और भाव। द्रव्य से पहचानो, द्रव्य से कैसे पहचाने? शास्त्रों में लिखा है द्रव्य से पहचानने के लिए भूत भावी वो द्रव्य। क्या मतलब? आप डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर साहब ही है ना? डॉक्टर साहब ही है। सतीश भाई इलाज करते हैं? हम तो मना कर रहे थे। हाँ बेटा हुए ना, तो फिर डॉक्टर नहीं है ना फिर?
डॉक्टर
कैसे रहेगा? मैं इलाज करना बंद कर दिया तो इलाज करना बंद कर देने पर भी डॉक्टर कहना एक पिछली अवस्था के आधार पर डॉक्टर कहा जा रहा है। ये द्रव्य निक्षेप है क्या? माने द्रव्य निक्षेप क्या करता है? किसी भी व्यक्ति और वस्तु को उसके पास्ट से देखता है, उसके फ्यूचर से देखता है। एक कंपाउंडर को डॉक्टर कह देना, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने वाले को डॉक्टर कह देना, सामने दृष्टि जीव को परमात्मा कह देना, निकट भव्य को भव्य कह देना, क्या समझ में आ रही है? सामने दर्शन लेने वाले पात्र जीव को ज्ञानी कह देना, लिया नहीं अभी, मंदिर के लिए निकल जाने वाले के लिए कह देना मंदिर गए। ये सब जो निकट से कथन किए हैं, ये सारे कथन द्रव्य निक्षेप से किए गए कथन है, और ये द्रव्य निक्षेप से किए गए कथन बहुत उपयोगी है। इनसे व्यक्ति पकड़ में आता है, नहीं तो व्यक्ति को पकड़ नहीं पाएंगे आप, मर जाएंगे इनके से पकड़ेंगे। बोलो, भले आपने शास्त्रों में ऐसा सुना होगा सीता रावण को संबोधन करने गई, सुना? सीता गई है नीचे तीसरे नरक में, सीता कहाँ है? सोलहवें स्वर्ग में। रावण कहाँ है? तीसरे नरक में। तो सीता तीसरे नरक में रावण को संबोधन करने के लिए गई, वहां जाकर के रावण को संबोधन किया सीता ने, सही है ये बात? सही है कि नहीं? लेकिन द्रव्य निक्षेप से सही है भाई, यदि द्रव्य निक्षेप नहीं हो ना तो ये बात झूठी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सीता कहाँ है और रावण कहाँ है? उपदेश देने वाला सीता नहीं है, उपदेश लेने वाला रावण नहीं है, कौन सीता और कौन रावण? अच्छा सीता ने जब वहां नरक में जाकर पुकारा होगा रावण भाई कहाँ है, वहां जो चौकीदार जो था पहरेदार उससे कहा कि मुझे रावण से मिलना है, मुझे यहाँ कोई रावण नहीं रहता, रहते ही कि नहीं? अभी बोलो, आपके यहाँ पर मैं कोई समझ लो आप मुकेश भाई से मिलने की बात कहूँ, मुकेश भाई है यहाँ कोई? कोई नहीं है। अरे है ना, मुकेश भाई को नहीं जानते कि मुकेश भाई तो है क्या? आगे बैठे फ्रंट में किन्हीं नहीं तो दिनेश भाई ने, किन्हीं नहीं मतलब पिछले जन्म के नाम से पुकारो। पिछले जन्म के नाम से पुकार रहे हो तो थोड़ी ना चलेगा, अब तो वर्तमान नाम से पुकारो ना। कि नहीं नहीं, यदि वर्तमान नाम से पुकारेंगे तो फिर आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे, वर्तमान में वो खत्म हो जाएगा, आप समझ रहे हैं? इसलिए वर्तमान युग की कहानियों में हमेशा वो पुराने नाम ही चलते हैं, दस जन्मों से कमट 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 ही चलता रहा, दसों जन्मों में उसका नाम कमट नहीं था भाई साहब, तो कमट क्यों चल रहा है? एक बार जो नाम फेमस हो गया ना अब उसी नाम से चलता जाएगा, अब नाम चेंज नहीं कर, नाम चेंज करने के फिर कितने याद रखेंगे, कैसे चलेगा? महावीर भगवान के भाव बतलाने होंगे तो हम बार बार नहीं कहेंगे महावीर भगवान का भाव, महावीर भगवान का भाव, महावीर भगवान का नंबर भले दे दो, दसवां भाव, पांचवा भाव, चौथा भाव, लेकिन कौन? महावीर भगवान। अभी वो राजा सैनिक, राजा सैनिक कौन से नरक में? पहले नरक में। तो फिर यहाँ अंतिम संस्कार किसका किया था? सैनिक का संस्कार यही हो गया था तो नरक में गया ही नहीं, रावण नरक में गया ही नहीं, लक्ष्मण नरक में गया ही नहीं, श्रेणी नरक में गया ही नहीं। कौन से निक्षेप थे? भाव निक्षेप थे। आगे आगे क्यों थे? भाव, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। भाव से देखो तो वर्तमान पर्याय दिखती है और द्रव्य से देखो तो भूत और भावी पना दिखता है। ये भूत भावी से कथन नहीं करोगे तो कैसे पहचानोगे? महावीर भगवान कौन से तीर्थंकर है? चौबीस में सही बताना तो जाएगा। भाव निश्चित से वो तीर्थंकर नहीं है, सिद्ध भगवान है। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरनाथ, तीन तीर्थंकर, तीन पदवियों के धारी, तीन तीन पद के धारी। कौन कौन सी पदवियां थी? चक्रवर्ती, रामदेव और तीर्थंकर। कौन था? शांतिनाथ भगवान के तीन पद थे पक्का? आपको मालूम सर चंद्रकांत? शांतिनाथ भगवान के तीन पोस्टे, शांतिनाथ भगवान तीर्थंकर भी, चक्रवर्ती भी और कामदेव भी। सही है मनोज भाई? बराबर तीनों एक साथ थे? भूत भावी के हिसाब से होगा, क्योंकि जब तीर्थंकर होंगे तब चक्रवर्ती नहीं हो सकते, जब तक चक्रवर्ती रहेंगे तब तीर्थंकर नहीं बन सकते। चक्रवर्ती पद को छोड़कर ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। दीक्षा लेने के बाद और श्रेणी चढ़ने के बाद तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन आप आज ही उनको तीर्थंकर कह रहे हो। जब ये श्रेणी चढ़कर के तीर्थंकर बन गए तो फिर चक्रवर्ती कहाँ रहे? चक्रवर्ती बना नहीं रहा, चक्रवर्ती थे, तीर्थंकर होंगे, कामदेव थे और सबको मिला करके ऐसे टाइम दे दिए हमने क्या? तीन पद के धारी तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान। ये निक्षेप है, आप सोचिए यदि ये निक्षेप नहीं हो तो हम इन तत्वों को नहीं पहचान पाएंगे। क्या एक जीव को हमने राजी कहा, भगवान महावीर स्वामी को हमने मारीची के भाव में देखा, अभी उन्हें सिद्ध दशा में देखा। श्रीमंदर भगवान के पंच कल्याण करते हैं कि नहीं करते हैं? श्रीमंदर भगवान है आपके यहाँ मंदिर में? श्रीमंदर भगवान विराजमान है? तो जो श्रीमंदर भगवान विराजमान है वो प्रतिमा पंच कल्याण पूर्वक विराजमान थी कि चार कल्याण पूर्वक? चार कल्याण पूर्वक विराजमान नहीं, कल्याण तो पांच ही किए होंगे। हाँ कल्याण तो पांच ही होते हैं, मोक्ष तो नहीं हुआ लेकिन। हाँ मोक्ष नहीं हुआ लेकिन भविष्य में मोक्ष होगा ऐसा जानकर मोक्ष कल्याणक बनाया जाता है। समझ आ रही है बात? ये तो प्रतिष्ठा की बातें बता रहा हूँ आपको। माने इनका मोक्ष होगा ऐसा समझकर अभी ही मोक्ष कल्याणक मना लिया, द्रव्य निक्षेप से होगा और क्या। और वर्तमान तीर्थंकर है वे, वर्तमान तीर्थंकरों के नाम बतलाओ। हाँ ये बताए सही नाम, वर्तमान तीर्थंकरों के नाम में ऋषभ देव, अजितनाथ, अम्भवनाथ, गलत हो गया। किसान ये वर्तमान तीर्थंकर नहीं, 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 नहीं। वर्तमान तीर्थंकर है तीमंदर, युगंदर, भाऊ, सुभाव, ये वर्तमान तीर्थंकर है। तो वे साहब ऋषभ देव से महावीर को वर्तमान तीर्थंकर नहीं कहे हम, कह सकते हो कि कैसे? द्रव्य निक्षेप हमारे पास है ना जवाब, द्रव्य निक्षेप से देखोगे तो अलग दिखेगा, भाव निक्षेप से देखोगे तो अलग दिखेगा। ये दोनों को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग प्रकार का है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार प्रकार के निक्षेप यहाँ कह दिए गए हैं। ठीक है आगे बढ़े, बढ़ना है आगे, बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ गया उन्हें, नहीं तो बता दो मेरे को आप, पांच मिनट कैसे निकल जाएंगे, बोलो क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया मनोज भाई, इतना बारीकी से आप देखेंगे तो मुझे डर लगता है क्या? आप क्या गलतियां देख रहे हैं, ऑडिट करते हैं बताओ, पूजा में जो स्थापना करते हैं वो भी स्थापना है, द्रव्यों की स्थापना, पुष्प की स्थापना, दीप धूप फल की स्थापना, ये सब स्थापना है। एक चावल थे, उन चावलों को हमने येलो कर दिया कलर और हमने उनके लिए नाम दे दिया पुष्प, पूजा करते समय हम जब पुष्प चढ़ाते हैं तो पुष्प में पीले चावल चढ़ाते हैं, ये पीले चावल क्यों चढ़ाए आपने, ये पुष्प कहाँ से आ गए, झूठ बोलते हो आप, झूठ नहीं बोलते, ये स्थापना निक्षेप का विषय है, ये असदाकार है, असदाकार स्थापना है हमारे यहाँ, स्थापना के बहुत प्रयोग मिलेंगे आपको, जैसे पूजन स्थापना, प्रतिमा स्थापना, व्यक्तियों की स्थापना, मैंने गुणस्थान महाराणा स्थान के अंदर जो स्थापना की बात कही आपसे, वो स्थापना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यदि आप गुणस्थान आदि के अंदर स्थापना देखेंगे तो आपको इसका हार्द समझ में आएगा। अभी तो सात तत्वों की स्थापना की बात कही, आश्रम में जीव की स्थापना करते हैं हम कई बार, आश्रम में जीव की स्थापना कैसे करते हैं, गुस्सा आ रहा है, बोले जिसको गुस्सा आता है वो जीव है, ये क्रोध में जीवत्व की स्थापना है, जीव तो ज्ञानवान ही है, जीव में क्रोध नहीं होता, क्रोध आश्रम तत्व है और जीव तत्व भिन्न है, लेकिन क्रोध में जीवत्व की स्थापना, मान में जीवत्व की स्थापना, ज्ञान में जीवत्व की स्थापना, ऐसी भी स्थापना होती है, जहां जहां ज्ञान है वहां जीव है, ये पहचान लिया हमने, ये ज्ञान में जीवत्व की स्थापना करी, ऐसे बहुत तरह की बातें हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, अभी जानने के उपायों के संदर्भ में इन्होंने आगे बहुत तरह की बातें बतलाई है, दो तीन सूत्र आगे ऐसे हैं जो जानने जानने के संदर्भ में हैं और सब एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं, तो मैं उनकी चर्चा अभी अगले सेशन में माने एक घंटे के गैप के बाद उन्हें फिर उसकी चर्चा करूंगा, अभी की बात को तो मैं यही विराम दे, भाव का चाहे जीव ही करता है ना, लेकिन भाव का चाहे जीव करता है ये अलग कथन है, जब हम सात तत्वों की व्याख्या से देखेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाव क्रोध आश्रम तत्व है और मैं आश्रम तत्व नहीं हूँ, मैं जीव तत्व हूँ, इसका मतलब उठने वाली राग द्वेष की भरी आएगी, मैं नहीं,
कर्म जाग्रुते